ये रुना किसी ने सुना नहीं, सुना नहीं तो ये छोटे बच्चे हाथ पैर पटकने लगे। अब वो बच्चे भी सब भूल गए, हाथ पैर पटकना देख के लल्ला के छोटे छोटे बच्चे ये देख करके मुग्ध हो गए, नहीं तो मैया से कहते कि लल्ला रो रहा है। तो इन्होंने मैया से कहने की बात इनके मन से उठा गई और ये भी देखने लगे नंदन नंदन के हस्तपद संचालन को, ये भी देखने लगे। पर ये बड़े कोमल और बड़े कठोर, इनके चरणों का क्या ठिकाना है, तो ये रोने लगे और पैरों को फटकारने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि समझ में भी नहीं आया और वो सकट के जाकर के इनका पैर छू गया, इनका पैर जाकर के सकट के नीचे जाकर के यूं छू गया। तो कुछ तो वो दबा रहा था ना, दबा रहा था असुर, तो उसके देह के बड़े भारी भार से, बोझ से और बल प्रयोग से दबा रहा था, कुछ तो वो नीचे ही हो गया था। और कुछ देर इनकी माया, कितना ही ऊंचा हो तो क्या है, ऊंचा होता तब भी कोई बात नहीं। तो इन्होंने बस धीरे से अपने चरण का स्पर्श करा दिया। अब वो स्पर्श होना था वो सुकोमल चरण कमल का स्पर्श था, लेकिन इतना कठोर था उसको मानो किसी ने उछाला, उछाला तो वो सकट जो था गाढ़ा उठा ऊपर को और उलटा और दूर जा पर कि जहां पर कोई नहीं था, जगह खाली थी, वहां उलट गया, गिर पड़ा। और जितने भी दही और दूध और मक्खन के जो पात्र थे, कांसी के पात्र, बड़े बढ़िया बढ़िया धातुओं के पात्र थे, तो वो जहां उलटा जहां सब गिरे तो झंकार की ध्वनि हुई बड़ी भारी, और वो ध्वनि सारे दिग्मंडल में परिपूर्ण हो गई और चूर्ण विचूर्ण हो गया सारा का सारा वो चक वो, और वो उलट गया और असुर जो रहा वो दब गया उसी के नीचे, समझे। और नीचे दब करके लोगों को पता ही नहीं लगा, समाप्त हो गए, भगवान ने उसकी क्रिया कर दी। तो न तो असुर के आने का किसी को पता लगा और न मारे जाने का, तो नंदन नंदन की अपनी लीला जो है यहां पर चलती रही। और इन्होंने अपनी लीला का एक अध्याय पूरा किया। तो जब भगवान के चरण कमलों से वो सकट टूटा, तो इसी इनका नाम हुआ सकटासुर भंजन नाम पड़ा इनका। तो अब जहां ये टूटा और गिरा यहां पर, अब तो महाराज बड़ा हल्ला मचा कि ये क्या हो गया। तो औत्थान कौत्सुक्य मना मनस्विनी समागतान पूजयति बजौकसः नैवाशनोद्वैरुदितं सुतस्य सारुदन स्तनार्थी चरणागुदक्षिपत्यम् अधशयानस्य शिशोरनल्पोर्प्रदानम् मृदुवं गृहतं विवर्तत विध्वस्त नानारसकुप्यभाजनम् दत्तस्य चक्राक्ष विभिन्न कुवरम्। तो इस प्रकार से भगवान ने जब पांव उछाले और पांव लगे, वो लाल लाल कुंकलों के समान बड़े सुंदर भगवान के चनार बिंद रहे मधुर अरुण, तो नन्ना सा वो लगा और लगते ही जब वो छकड़ा उलटा तो तमाम मटकियां फूट गईं और तमाम वो आवाज हुई, जुआ उसका था वो फट गया। तो इस तरह से जब ये घटना हुई तो दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा बजस्त्रिय उत्थानिके कर्मणिया समागताः नंदा देश्चाद्भुत दर्शना कुल स्व कथम स्वयं वैशकटम विपर्यगात। ये करवट बदलने के उत्सव पर जितनी भी स्त्रियां आई हुई थीं वे सब के सब यशोदा रोहिणी नंद बाबा गोपगण सारे के सारे इकट्ठे हो गए और इस घटना को देख करके सब व्याकुल हो गए। तो सब आपस में कहने लगे कि अरे ये होखा गया, ये छकड़ा अपने आप सकट कैसे उलट गया, इतना बड़ा जो हिलता नहीं, जिसके बैल बांधते थे और हिलता नहीं था, वो छकड़ा वो गाड़ा अपने आप उलट कैसे गया, तो निश्चय कर न सके। तो बच्चे जो पास बैठे थे, तो बच्चों से कौन पूछता, पांच पांच बस के बच्चे, इनकी तो कोई बिचारों की गिनती थी ही नहीं, इन्हें कौन पूछता। लेकिन बच्चों से रहा नहीं गया, जो सब देख रहे थे ना बच्चे, इस प्रकार से इस कन्हैया ने ऊपर टांग की और इसका पैर छुआ और इसने यूं धक्का दिया तो गाड़ा उलट गया, ये सब चीज बच्चों ने देखी। तो बच्चों ने कहा, हम बतावें दादा, हम बतावें, ये तो सब कन्हैया ने उलट दिया है। तो नंद उपनंद हंसने लगे, बड़े बच्चे ही तो ठहरे पांच बरस के, बोले बताओ बताओ। तो गोपाल चंपू में आया, एक बालक सामने आया। अब वो एक तो सब पूछे जोर जोर से, इतने बड़े बड़े लोग, और अभी उसकी बोली पूरी खुली भी नहीं थी बच्चे की, और जल्दी में बिचारा बोला। तो बड़ा सुंदर लिखते हैं, मम मम पापा स्वतस्सु यथान ये यदा च चल मुत्था पितवानयम तदा ते तिन स्पृष्ट मात्रो डी 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 दीन वृत्त स्वयं सकत। इतना जब बोला तो सब बालक बोल गए, हाँ हाँ ठीक, रुदता रे न पा दिया न क्षिप्त मेतन न संशया भागवत का। बोले ये हमने देखा, इस रोते हुए बच्चे के पैसे गाड़ी उल्टी है, कोई संदेह नहीं इसमें। बालक की बाई रुक रही थी ना, तो जब वो मम कहना चाहता था तो मम मम कहने लगा, और जब पार्श्व कहने लगा पास तो पा 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 कहने लगा, जब यदा कहने लगा तो ये कहने लगा, और जब चरण मुखा विद्वान चय उच्चारण करने लगा तो चय करने लगा, और तदा जब कहने लगा तो तदा तेज ते कहने लगा इस प्रकार। और ये उड़ा दीना कहा तो डी 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 कहने लगा, शकट में शैसे कहने लगा। इस प्रकार से बच्चे की बोली तो बड़ी प्यारी लगी सब नंद बाबा वगैरह को, पर बच्चों की बात पर ध्यान नहीं। बोले ये सब बच्चे, भला ये कहीं गाड़ा उलट सकता है, क्योंकि वहां तो ऐश्वर्य तो था नहीं, विशुद्ध माधुर्य था। ऐश्वर्य सामने भी कई बार आया, पर मैया के माधुर्य से ऐश्वर्य परास्त हो गया हमेशा। ऐश्वर्य की यहां पर चरित्री नहीं, ऐश्वर्य ने आगे अपने अपने यहां तो आगे जाकर के, तो ऐश्वर्य एक दफे आगे जाकर के ऐश्वर्य जो योग माया उसने हाथ जोड़ लिए, यशोदा मैया जाके हाथ जोड़े। ये कथा आनंद वृंदावन में आती है कि ये चातुरी देवी जो थी योग माया, इसने हाथ जोड़ लिए, बोले मैया तुम्हारे सामने हार गई, अब जितना तुम चाहोगे उतना ऐश्वर्य दिखाऊंगी और ऐश्वर्य सामने ही जाऊंगी। मेरा तो ऐश्वर्य गया और परास्त हुआ, गया और परास्त हुआ, जहां जहां पर ऐश्वर्य आया वहां वहां पर मैया का माधुर्य आगे आ गया। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बच्चे में कौन सी बात। इस प्रकार से लेकिन उठा लिया मैया ने, आकर के उठाया गोद में और बड़ी प्रसन्न हुई। निश्चित कारण तो सामने आया नहीं, तो नते शिरे गोपा बाल भाषित मित्युत अप्रमेयम बलंतस्य बालक सनते विदोह। सुदेव जी कहते हैं कि गोपों के मन में कार्य निश्चय नहीं हुआ, वहां खेलते हुए बालकों ने गोपों गोपियों से कहा भी किसने रोते रोते गिराया है, पर यह बात उनके विश्वास में आई नहीं, विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये जो बालक है ये बालक ही नहीं, ये अनंत विश्व पालक है, तो इसके अनंत अनंत बल को अप्रमेय इसके बल को वे लोग जानते नहीं थे और जानना चाहते भी नहीं थे, तो इसलिए उनके समझ में बात आई नहीं। तो रुदंतम सुतमादाय यशोदा ग्रह शंकिता कृतस्वस्तयनम विप्रही सूक्त ही स्तनम पायत। यहां तो बच्चे की रक्षा का बड़ा फिक्र। तो यशोदा मैया ने अपने मन में समझा कि ये कोई ग्रह का उत्पात, ग्रह शंकिता, ये किसी कुग्रह का उत्पात है, तो इसकी शांति करानी है। तो बोले शांति हुए बिना दूध इसको पिला दिया जाए और कहीं उससे दूसरा बिगाड़ हो जाए तो मैया के तो माधुरी है ना। तो रोते हुए बच्चे को उठा करके अपने लाल को गोद में तो ले लिया। फिर ब्राह्मण आए हुए थे ही उस दिन, ब्राह्मणों को बुलाया कि महाराज पहले शांति पाठ करो, स्वस्त्यायन करो। ब्राह्मणों ने शांति पाठ किया और जल छिड़का, अभिषेक किया, ये सब किया। उसके बाद रोहिणी ने कहा कि अब तो दूध पिलाओ, बहुत देर हो गई, रोता रहा बच्चा और बीच में इतना डंगा हो गया। तो अब माँ ने लेकर के स्तनमपायत स्तन दुग्ध पिलाया। पूर्वत स्थापितम गोपय बलिभि स परिच्छदम विप्रा भूत्वा थयान चक्रु दुग्धक्षित कुशाम्भुवि। अब इनके तो छकड़ा बड़ी चीज रही ना घर में, नंद बाबा के तमाम उसके नीचे सामान रख देते, ऊपर रख देते बढ़िया बढ़िया चीजें सब। तो तमाम गोपों को बुलाया, गोपों ने बड़े बड़े बलवान गोप आए और छकड़े को उठा के सीधा किया। उसने फिर वो जुआ हुआ ठीक किया, सब जोड़ जाड़ दिया, सब सामग्री पूर्वत रख दी गई। जो फूटे भांड थे उनको तो बार बार फेंक दिया गया और नए नए भांड सब बर्तन सब रख दिए गए। अब बोले शांति क्रिया होनी चाहिए, छकड़ी की स्थापना फिर से हुई है ना, इसलिए ब्राह्मणों से कहा हवन करो। ब्राह्मणों ने हवन किया, फिर दही अक्षत कुश और जल के द्वारा भगवान की पूजा की और छकड़े भगवान की पूजा की। छकट की पूजा की ब्राह्मणों ने, तो ये ब्राह्मणों के आशीर्वाद का फल बताते थे। न तेषाम ये सूयाजित गंभीर श्या हिंसा मान विवर्जिता, न तेषाम सत्यशीला नाम आशुषो विफलाकृता। वो कहते हैं कि ऐसे कोई ब्राह्मण मिल जाए, उन ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाए तो कभी विफल नहीं होता। कैसे ब्राह्मण? जो किसी में दोष नहीं देखते, जो कभी झूठ नहीं बोलते, जो दंभ नहीं करते, जो ईर्ष्या नहीं करते, जो हिंसा नहीं करते और जिनमें अभिमान नहीं होता। असूया अनित गंभीर गंभीर शाह हिंसा मान विवर्जिता, जिन ब्राह्मणों ने में ये दोष नहीं होते, जो किसी दूसरे का दोष नहीं देखते, झूठ नहीं बोलते, दंभ नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, दूसरे में देख करके दाह नहीं करते, हिंसा नहीं करते और अभिमान नहीं करते, वो सत्यपरायण रहते हैं। ऐसे जो सत्यशील ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी भी विफल नहीं होता। नंद बाबा जी सब ऐसे ब्राह्मण आए हुए थे, सब ऐसे ही ब्राह्मण थे, सात्विक ब्राह्मण। ये सोच करके नंद बाबा ने सोचा कि अब इन ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले लिया जाए तो सारा संकट लल्ला का सदा के लिए टल जाए ना। बार बार आशीर्वाद लेते हैं पर बार बार फिर मन में आती है कि फिर आशीर्वाद लें, फिर आशीर्वाद लें। ये सोच करके नंद बाबा ने और लल्ला को यशोदा मैया की गोद से ले लिया। इसी बालक मादाय सामर्ग सामर्ग जो रूपा करते ही जले ही पवित्र औषधि धर अभिषिच्य विजोत्तमयी वाचयित्वा स्वस्त्यैनम् नंद गोपस्तमाहितः हुत्वा चागरिम जुजातिभ्य प्रादादन्नम महागुणम। नंद बाबा ने ये सोच करके और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया यशोदा की गोद से, और ब्राह्मणों के द्वारा साम ऋग यजुर्वेद के मंत्रों से संस्कृत और पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक करा। वेदों वेद मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित और पवित्र औषधियों से युक्त जो जल था, उस जल के द्वारा ब्राह्मणों ने बच्चे पर अभिषेक किया। और फिर उन्होंने बड़ी एकाग्रता के साथ स्वस्तैन किया, शांति पाठ किया, फिर हवन किया। इसके बाद ब्राह्मणों को जब तक जिमाया न जाए तब तक सारा काम गड़बड़ समझे, और सब सब काम कर दिया और भोजन न कराया जाए तो अधूरा ही रह गया काम। तो नंद बाबा ने प्रादादन्नम महागुणम, नंद बाबा ने अति उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराया, संतुष्ट हो गए ब्राह्मण सब। तो केवल भोजन ही करा दे, ऐसे कैसे ही बैरंग भेज दे तो ये ठीक नहीं, तो गावः सर्व गुणोपेता वासः सर्ग रुक्म मारिणी आत्मजा हृदयाथाय प्रादाते नानुयुंजत। नंद बाबा के गायों की तो कमी थी नहीं, तो नंद बाबा ने हुक्म दिया कि बस तमाम सोने के हारों से गायें सजाई जाएं और फूलों के हार पहनाए जाएं और उन सारी गायों को बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित किया जाए। तो बस गायें आ गई। हुक्म देने की देर थी, भंडार तो भरा था ही, लक्ष्मी जी वहां पर खेल रही थी। तो नंद बाबा ने ये सब किया क्यों? अपने पुत्र की उन्नति की और अभिवृद्धि की कामना से, और कुछ नहीं। ये हमारा जो सुत है इसका अभ्युदय हो, अपने बेटे के अभ्युदय की कामना से। और ब्राह्मणों को सारे गुणों से संपन्न वो जो गायें थीं, वस्त्र से और आभूषणों से और स्वर्ण हारों से, पुष्प मालाओं से विभूषित ये दी। अब तो ब्राह्मण संतुष्ट हो गया, देने लगे आशीष है। विप्रा मंत्री विदोष उक्ता तैरिया तुक्ता तथा आशीष। नंद बाबा राजी हुए, ब्राह्मणों ने खूब आशीर्वाद दिया। बोले चिर जीवे, ये जीवित है और बड़ा समृद्धिवान हो और बड़ा ऐसा हो। ब्राह्मण ने जब आशीर्वाद दिया तब नंद बाबा के मन में आया कि अब काम बन गया। क्यों? नंद बाबा जानते थे कि विप्रा मंत्र विदु युक्ता सैरिया प्रता तथा शिता निष्फला भविष्य न कदाचित स्फुटम। ये बात स्पष्ट है कि वेद वेदता सदाचारी ब्राह्मण जो आशीर्वाद दे दें तो वो आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। इन वेद वेदताओं का, मंत्रविदों का और ये सदाचारी ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो बस आज काम बन गया। ये शक्तासुर भंजन की कथा समाप्त हुई। इसके बाद कथा आती है तृणावर्त। तृणावर्त की कथा आती है। एक दिन की बात है, गरिमाणम शिशोरवोढ़ न सेहे गिरिकूटवत् धूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भारत पीड़िता। ये लीलामय है न, भगवान तो पुष्प से भी सुकोमल है और जब मैया की गोद में रहें तो मैया को कहीं जरा सा भी बोझ न लगे, इसलिए ऐसे फूल से बन जाए कि पता ही न लगे मैया को कि गोद में कोई है। वो नरम नरम कोई चीज ऐसी सुकोमल सुकोमल लगे कि मैया उसको और भी ज्यादा पकड़े रहे, हृदय से लगाया रहे, आनंद आवे। पर आज उन्हें नई लीला करनी थी, क्योंकि मैया के गोद में रहते तो ये काम बनता नहीं। ये तो सब जानते हैं लीलामय है। तो ये लल्ला को गोद में लिए लालयंती सतम पर सती, ये सती अपनी अपने लल्ला को बड़ा प्यार कर रही थी, दुलार रही थी गोद में लिए। तो ऐसा क्या हुआ कि भगवान ये मानो पहाड़ के चट्टान की तरह से बड़े भारी हो गए। मैया ने देखा कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, राक्षसों नहीं आ गया। मैया के मन में तो ये तो आता नहीं कि इसी में कुछ है, ये सारा भार इस संसार का ही उठाए हुए है, ये तो बात मन में आई नहीं। लेकिन भार इतना बढ़ा कि मैया से रहा, गोदी में नहीं रखा गया, यहां खड़ी नहीं थी, बैठी रही, गोदी में नहीं रखा गया। तो उठा करके नीचे धीरे से, तो नीचे पत्थर पर रख दिया। मन में बड़ा आश्चर्य मैया के, भूमो विधाय तम गोपी विस्मिता भारत पीड़िता महापुरुष माध्यव जगता मास कर्मसु। पृथ्वी में बैठा दिया, बड़ी आश्चर्यान्वित हो गई। भगवान का स्मरण किया, पीछे कहा कि मैं थकवट गई थी, मेरा ही कोई बहम होगा। इसी प्रकार सोच करके भगवान के याद किया, भगवान रक्षा करेंगे इसकी, और अपने घर के काम में लगे। बात क्या थी? दैत्यो नामना चनावर्त कंसभृत्य प्रणोजित चक्रवात स्वरूपेण जहारासी नमर्भकम् गोकुलम सर्वमावृण्वन् मुष्णम चक्षुंसिरेणुभिः वीर्यन् सुमहाघोर शब्देन प्रदुषो दिशः मुहूर्तमभवद्गोष्ठम् रजसा तमसा व्रतम सुतम यशोदा नापश्यत कस्मिन्नस्तवती यतः नापश्यत कश्चनात्मात्मानं परम चाधि विमोहितः तनावत निसृष्टा शर्कराधिपद्रुतः इति खरपवन चक्रपांस वर्षे सुत पदवी नबला विलक्षमाता अति करुण मनुस्मरंत शोषद भूमि पचिता मत वक्त का यथा गौ रुदित मनु निशम चत्र गोप्यो दृत मनु तप्त धियो श्रुपूर्ण मुख्य रुदुर नुपलब्ध नंद सून पवन पारत तांसु वर्ष वेगे समावर्त शांतयो वात्यारूप धरोहरन कृष्णं न भोगतो गन्तुं नाशक्नोत् भूरिभावत् समस्मानं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्कृष्टुं नाशक्नोत् अद्भुतार्हतम् गलग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचनः अव्यक्त रागो न्यपतत्यः बालो विसुर ब्रजे तनावत नाम का एक दैत्य था। वो कंस का निजी सेवक था, कंस भृत्य, कंस का वो खास अपना सेवक था, भृत्य था। तो कंस की प्रेरणा से वो बवंडर बना, भवूलिया बवंडर बन के बवंडर के रूप में वो गोकुल में आया और वो बैठे हुए बालक को आकाश में उड़ाकर, तो बालक को उड़ा करके ये ले गया। तो यहाँ पर ये कहते हैं वैष्णव दोषणकार कि भगवान को उड़ा ले जाए कोई राक्षसी शक्ति से, ये कभी भी संभव है क्या? तो कहते हैं ये तो संभव नहीं है। तो भगवान को वो कैसे उड़ा के ले गया सर? भगवान को क्यों उड़ा के ले गया? तो कहते हैं कि भगवान की जो कृपा शक्ति है उसी ने ये काम किया। जहां जहां पर कृपा शक्ति भगवान की उतरती है वहां वहां पर इसी प्रकार से अद्भुत कार्य होते हैं जिनकी संभावना नहीं की जाती, इस प्रकार के काम वहां पर हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि भगवान को नीचे उतारना यशोदा मैया था, ये भी बड़ा कठिन, पर भगवान ने ये किया कि वो बाल विग्रह जो भगवान का था इतना भारी हो गया कि यशोदा मैया को गोद के बच्चे को गोद में रखना कठिन हो गया। तो ये लीलामय की जो योग माया है वो योग माया इन सारे कामों को संपादन किया करती है। तो योग माया के कारण से ये सब हुआ और जब उनमें भार आ जाए तो सारे विश्व ब्रह्मांड जिनके एक एक रोम कूप में अनंत अनंत हैं वे जब अपने भार को प्रकट करें तो किसका सामर्थ्य कि उनको उनके भार को बहन कर सके? तो प्रेमाधीनता और भक्तवात्सल्य इन दोनों के कारण से भगवान जब जैसी इच्छा होती वैसी लीला किया करते हैं। तो माँ यशोदा जिनको कभी अपनी गोद में तो कभी अपने हृदय पर कभी हाथ से यूं उठा लिया ऊपर, मैया यूं उठा लेती फूल की तरह से उठा करके लाड किया करती। और वो मैया आज बाहर से पीड़ित हो गई और धारण नहीं कर सकी, नीचे बैठा दिया इसको। तो अब क्या करें? तो नीचे बैठाने के बाद फिर उसने पुरुषोत्तम का, महापुरुष का, भगवान नारायण का ध्यान किया और मन ही मन कहा कि महाराज रक्षा करने आ जाओ, हमने तुम्हारी सेवा की है और तुम किसी प्रकार से भी उस बच्चे की रक्षा करना, तुम्हारे आशीर्वाद से गोकुल में आज तक उत्पात नहीं हुआ, ये बचे रहे। ब्राह्मणों का आशीर्वाद दिया है महाराज, इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद को आप भूखा मत कर देना कहीं। यशोदा मैया ने प्रार्थना की तो भगवान को तो यहाँ पर काम करना है। तो वो जो कंस का भेजा हुआ महासुर था तनावर्त, वो बड़े जोर से ये घूमता हुआ प्रबल घूर्णावर्त के रूप में वो आकाश से दौड़ा आया और गोकुल को उसने केंद्र बना लिया, मंडलाकार वो आने लगा। तो गोकुल में उस समय इतनी जोर से धूल उड़ी कि सारा गोकुल उससे समाच्छन्न हो गया, ढक गया सारा रूप, और जितने ब्रजवासी थे ये सब मारे भय के व्याकुल हो गए और नंदालय की ओर नंद बाबा के घर से आने लगे दो भागों से। बासिल भाग मरा कहीं के अनिष्ट न हो जाए, बच्चे का अनिष्ट न हो जाए, दूसरे वहां जाएंगे तो वहां नारायण की रक्षा है। नंद बाबा का घर इन लोगों ने जान लिया, अब यहाँ नारायण रक्षा करते हैं, तो वहां जाएंगे तो हम लोग भी बच जाएंगे। अपना स्वार्थ और बच्चे का प्रेम, इन दोनों से वो घिरे हुए तमाम जो नंदवासी ये नंद के ब्रजवासी लोग थे ये सब नंद बाबा के घर की ओर आने लगे। बड़े जोर से हवा चली, बारिश चली, तूफान आया, बड़ा शब्द हुआ, तो कहते हैं कि इतनी जोर से वो हवा का वेग चला कि दस सब टूट टूट करके गिरने पड़े, ये सब गिरने लगे, दसों दिशाओं में नाज खा गया। सबने देखा कि मानो सैकड़ों सैकड़ों बिजलियां गिर रही एक साथ, उसके साथ साथ धूल वर्षा हो रही, पत्थर वर्षा हो रही, इस प्रकार से सारा गोकुल आक्रांत हो गया और गोकुल में अस्पष्टता आ गई, अंधकार छा गया। जनाब ने आकर के क्या किया कि सबसे पहले नंदन को उठाया, हल्के बन गए, यहां हल्के बन गए कि जिसने उठा ले जा, तो इनको उठा लिया। वो ले चला ऊपर, अभी अंधेरे में ही देखने लगी, बच्चों को बैठाया भाई देख जरा घर में घुसे मैया, तो यहां देखने लगी, टटोलने लगी, कहीं नहीं मिला। इतना वर्ष तो ऊपर से धूल बरसा रहा, प्रबल वायु चल रही, साथ साथ कुछ कुछ पत्थर बरसा रहा, पत्थर के टुकड़े बरसा रहा, किसी के सामर्थ्य नहीं कोई इधर उधर हिल सके। सबकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई, घोर शब्द से कान सबके बहरे हो गए, पत्थरों के गिरने से और सबकी गति शक्ति लुप्त हो गई। सब व्याकुल होकर के उसके पर हाथ देकर जो जहां था वहीं बैठ गए। चनावत के द्वारा वर्षित रज और तजनित तम, रज तम से गोकुल आक्रांत हो गया, गोकुल में रज तम छा गया। गोकुलवासी अब किसी दूसरे का संभाजना तो दूर रहे, अपनी रक्षा करने में भी अपने को असमर्थ मानने लगे। इतना वक्त के द्वारा बरसाया हुआ ये रज धूल, इसने गोकुल में महातम तम अंधकार, धूल बरसी तो अंधकार छा गया, रज आया तो रज के साथ तम आया। तो गोकुलवासी जो हैं ये सब के सब निस्सहाय हो गए, और यशोदा मैया ने भी श्री कृष्ण की कहीं खोज नहीं पाई। जब रजतम आ जाता है जो कृष्ण नहीं दिखाई देते, तो कहते हैं कि जरा इस पर विचार करें। तो ये महाराज बड़ी सुंदर भावना लिखते हैं कि जब ये बहिर्मुख जीव, ये बहिर्मुखता रूप असुर के द्वारा आक्रांत होता है, तो पहले जो रेवर्षण होता है, रज आता है, सत्व से चित होकर रजोगुण का विस्तार हो जाता है और फिर रजोगुण आ जाता है तो बुद्धि छा जाती है, इसलिए फिर आत्मा का भगवान का ध्यान नहीं रहता और वो सब देह बुद्धि संपन्न होकर ममता में भर जाते हैं। यशोदा मैया की भांति निकटवर्ती कृष्ण का जो अनुसंधान नहीं कर पाते, तो भगवान सबके पास हैं, भगवान सबके अपने हैं, भगवान सबको मिल सकते हैं, तो हृदय में भगवान निरंतर रहते हैं, परंतु रज और तम के कारण संसार का दुख, संसार का दारिद्र, संसार के अभाव इत्यादि ये पत्थरों की वर्षा होती है, इससे बहिर्मुख जीव जो है ये भगवान को भूल जाता है और इसी में व्याकुल हो जाता है। इतना वक्त के आने से पहले जैसे जोर का एक तूफान आया और जैसे बड़ा प्रबल शब्द हुआ उससे दसों दिशाएं भर गई, इसी प्रकार जब बहिर्मुखता आती है तो कामना वासना जनित मैं और मेरा बस इसी से मनुष्य के जीवन की सारी इंद्रियां और मन चित्त भर जाता, ये मैं और ये मेरा, ये मैं और मेरा, इसके सिवा कुछ नहीं रहता, भगवान भूल जाते हैं और कान दुख जाते हैं इस आवाज से, मैं मेरे की आवाज से। ये सारे जीव जो हैं संसार के हम लोग, ये मैं मेरे की आवाज करते हैं, मैं मेरे की सुनते हैं। तो इसी प्रकार इस आवाज से कान बहरे हो जाते हैं, दूसरी बात शास्त्र की बात भगवान की बात कानों में प्रवेश नहीं कर पाती और करती है कानों में, तो इस शब्द कोलाहल में इतनी ज्यादा जा करके रुक जाते इसका कहीं पता नहीं लगता। तो भगवान अपनी माता की गोद में थे, उनके देह के भार से आक्रांत होकर के मां ने निश्चय किया कि इसको नहीं रख सकते, इसीलिए पुत्र को भूमि में उन्होंने रख दिया। और जब ये महान झंझावात आया, तूफान आया, तो यशोदा ने सोचा कि अब इस पुत्र का जो भार है इतना भारी हो गया, तो ये हवा क्या करेगी इसका, ये हवा जो है तूफान इतने भारी को उठाएगी कैसे। तो मैया ने सोच भी नहीं किया इतने उस समय। तो ये मैया की सिद्ध भावना थी, लीलामय का लीला प्रकार अन्य प्रकार से होने का था। तो वहां पर ये भगवान लघुत्व प्राप्त हो गए, हल्के हो गए, उतना वर्ष के देखते देखते मैया के देखते देखते अंधेरे में उतना वर्ष इनको उठा के ले गया, इसीलिए उठा के ले गया इन्होंने चाहा इसलिए। तो यशोदा मैया जो है वो इस बात को कैसे जान सकती, ये तो अपने पुत्र में बड़ा भारी भार को उठा नहीं सकता, निश्चिंत रही, बोले यहाँ मैं हट गई दूर तो मुझे नहीं मिल रहा है, होगा तो यहीं पर। इस प्रकार से अंधकार में वो रह गई और पुत्र को खोजने लगी, पुत्र नहीं मिला। जब अंधकार छाता है तो भगवान को खोजने की चेष्टा कभी कभी पहले करता आदमी सुख के रूप में, और फिर वो जब अंधकार से बिल्कुल ढक जाता है उसके बाद वो अनुसंधान करना भी छोड़ देता है। तो मैया के लिए तो ये बात नहीं, मैया के मन में तो वात्सल्य भाव था, उसके तो मन में लगी हुई थी, तो उन्होंने फिर भी समझा, वात्सल्य स्नेह था ना, कि अंधेरा है ना, तो बच्चा कुछ घुसक घुसक करके भी थोड़ा अलग हो गया होगा, इसमें कोई विशेष तो कहीं जाने आने की संभावना है, कहीं भाग गया वैसी बात तो नहीं कहीं होगा, तो कोई बात नहीं। फिर मन में आया कि राम राम कहीं उड़ा न ले गया हो ये हवा, ये आती वात्सल्य भाव जागा, पुत्र के स्नेह से अधीर हो गई। और तो जैसे किसी वृक्ष की जड़ काट दी जाए तो वृक्ष गिर जाता, इसी प्रकार से यशोदा मैया गिर पड़ी, हा पुत्र कहकर रोने लगी। और उनका रुदन ऐसा करुण था कि लिखते हैं कि काठ पत्थर तक दूर रुदन से विदीर्ण हो गए। जैसे बछड़े को खोई हुई गाय के नेत्रों से जल की धारा बहती है, वो हम्बा हम्बा पुकारती, उसी प्रकार से यशोदा मैया पुकारने लगी और रोने लगी। अब क्रम क्रम से वायु का वेग घटा, भूमि वर्षण भी निवृत्त हुआ, पर चारों तरफ गोकुल में हाय हाय मच गई, गोकुल में हाय हाय मच गई, सब व्यस्त हो गए और सब तरफ एक ही प्रश्न, दूसरा प्रश्न नहीं, अरे नंद का लाला राजी है ना, अपनी बात किसी को याद नहीं, घर में क्या हो गया ये पता नहीं, सब के सब नंद का लाला राजी है ना, नंद का लाला सब ठीक ठीक है ना, इस प्रकार से। लेकिन कोई किसी को उत्तर न दे, किसी को पता नहीं, उत्तर न मिले, सब व्याकुल नंदा लय की तरफ सब दौड़े दौड़े हुए गए। वायु वेग, अब वो राक्षस जो था ना उसकी दशा हुई है विचित्र, वो आगे आवेगी, तो अब वो शब्द बंद हो गया, जो वृक्षों से शब्द हो रहा था, कि शाखाएं टूट रही थी, डालियां चरमर चरमर शब्द हो रहा था, वो बंद हो गया। जब धूल उड़नी बंद हुई तो सूर्य का कुछ प्रकाश आया तो उजाला भी हो गया, और अब तो तमाम गोपियों का ये जो नंदालय में करुण आर्तनाद हो रहा था वो सबको सुनाई देने लगा। सब लोग नंद घर की ओर दौड़े और इन स्त्रियों की देवियों की कबरियां जो हैं ये बेणी ये सब मारे शोक के खुल गई और वस्त्रों का उन्हें होश नहीं रहा। हाय हाय क्या हो गया, सब लोग छाती पीटने लगे, सिर पीटने लगे, बड़ी बुरी दशा सबकी हो गई। नंदालय में आए, देखा नंदालय शून्य, कहीं पर बालक ढोकर खोजने पर भी नहीं मिला। नंद पत्नी यशोदा मैया जमीन पर पड़ी हुई है और हा पुत्र कह करके रो रही है। इस आर्तनाद के सिवा और कोई उनमें जीवित रहने का लक्षण नहीं दिख सकता, केवल आर्तनाद हो रहा है और श्वास नहीं चल रही उनकी, बड़ी बुरी दशा। पुकारने पर भी उत्तर नहीं दे रही हैं, अंगों के वस्त्र जो हैं ये सारे के सारे इधर उधर हो गए हैं। गोपियां हाथों को खींचती है, पैर खींचती है, सहराती हैं, पर कोई भी उत्तर नहीं मिलता। यशोदा की ये अवस्था देख करके सारी गोपियां व्याकुल हो गई। नंदालय के प्रत्येक घर में, आंगन में, घर में, छतों पर, सब जगह खोज डाला गया, कहीं पर उड़ के गया हो बच्चा, एक एक कोना खोज लिया, सारी छतें खोज ली, हजारों आदमी खोजने में लग गए, पर कहीं भी पता नहीं लगा। तब तो शोक का वेग बहुत बढ़ गया, तो सब के सब उच्च स्वर से रोने लगे। बड़ी करुण अवस्था वहां पर हो गई। इसके बाद गोकुल तो शोक से परिव्याप्त हो गया, भावृत जीवन सब लोग रोने लगे, बड़ी बुरी दशा हो गई। इधर क्या हुआ कि नंद नंदन ने पहले तो अपने को हल्का बनाया और सोचा कि आज इसी प्रकार से आकाश की हवा खा लें, अरे विमान मिल गया अपने आप ही। तो उन्होंने क्या किया कि उसके गले को पकड़ के लटक गए, दोनों हाथों से गले को पकड़ लिया और लटक गए। तो पहले पहले तो भार नहीं दिखाई दिया, तो जैसे कोई नीलमणि का पदक, नीलमणि का कोई पदक किसी के गले में लटक रहा हो, शोभा पा रहा हो इस प्रकार से। और वो बड़ा भारी उसका तो विशाल शरीर, उस शरीर में ये पदक की तरह से नीले नीले चमकते हुए गहने से ये लटकते रहे। बाल लीला बड़ी सुंदर हुई, तो बड़ा सुंदर बालक भाग चना बचने देखा और ऊंचे ले जाए, हल्के रहे ही बहुत ऊंचे पर ले गया। और मन ही मन में सोचने लगा कि ये पता नहीं लगता ये पूछना और ये कागा सुर जो आए, छटका सुर आए, इस बच्चे ने इनको मार दिया, ये तो फूल सा बच्चा है, अभी गला घोंट देंगे मर जाएगा, अभी फूल से बने हुए हैं ना। तो ये आश्चर्य की बात है कि इस बालक ने उनको मार दिया, ये बात समझ में आई नहीं। इतना वर्ष ने तुच्छ समझ करके, छोटा सा हल्का सा बालक समझ करके, तो दिखा कि कुछ देर आकाश में इसको लिए घूमे फिर मार देंगे या ले जाएंगे कंस के पास ही, जैसे जैसे क्या है इसको। इस प्रकार से आकाश पथ में घूमने लगा। इधर जब गोपियों का रोना सुना भगवान ने, क्रंदन सुना, माँ रो रही है, रोहिणी रो रही है, बाबा आनंद रो रहे हैं, अब भगवान की इच्छा हुई, इनके मन में स्नेह जागा कि मैया रो रही है, बाबा रो रहे हैं और तुम यहाँ खेल रहे हो, खेल रहे थे ना ये, तो इन सोचा कि खेल को छोड़ो, अब तो नीचे उतरना है। नीचे उतरने की जहां इच्छा थी योग माया तैयार थी, ऐश्वर्य को साथ लिए, तो जो नील कमल के सदृश जो सुकोमल और बड़ा हल्का सा जो भगवान का श्री विग्रह था, वो नीलमणि पर्वत के समान भारी हो गया, मानो नीलम का बड़ा भारी पहाड़ हो, तो नीलम के पहाड़ के समान भारी हो गया। अब तक तो इतना वर्ष फूल से हल्के बच्चे को गले में लिए,
अब नंदनंदन की जब इच्छा हुई कि यूं उतरना है तो उनकी इच्छा पर व्याघात करे उसकी शक्ति है, एक पैर भी वो आगे बढ़ सके। तो देखते ही देखते इतना भार हुआ, इतना बोझ हो गया कि वो तो व्याकुल हो गया। जितना वक्त रहा वो अत्यंत क्लांत हो गया। उसने मन ही मन में सोचा कि ये क्या हो गया, ये फूल सा बालक नन्ना सा और इतना बोझ कैसे हो गया। अरे कहीं नई भूल से नीलम का पहाड़ तो नहीं उखाड़ लाया, समझा मैंने फूल हो और ये है कहीं नीलम का पहाड़। तो मैं तो उसमें मदवर किए हुए था, ये मद के नशे में मैंने सोच लिया कि ये तो नील का फूल ही है और ये तो है पहाड़, तो जरूर मैंने कोई पहाड़ उपाड़ लिया है, नहीं तो भला छोटा सा बच्चा आगे भी फूस आता था ये कैसे हो जाता इतना भारी। तो ये मेरी भूल हुई, मैं पहाड़ उपाड़ लाया। लेकिन ये बालक ये भी है, किसी का अगर ये सब किसी की करतूत है तब तो भाई ये बालक अद्भुत बालक है। ये मेरी भूल, ये शकटासुर और पूतना काकासुर यादि ठीक इसी के द्वारा मारे गए हैं और अब तो मेरी भी खैर नहीं मालूम होती। पर कैसे भी तो मेरे हाथ में है ना, अभी इसको ले करके उड़ करके मैं कहीं मथुरा चला जाऊं तो कुछ काम तो बन जा। पर एक पैर नहीं बढ़ सके आगे, इतना भार हो गया। तब उसके मन में आया कि चलो एक काम करो, ऊपर से इसी को नीचे फेंक दें, ये भारी है ही और गिरते चूर चूर हो जाएगा, तो ऐसे काम बन गया अपना। ये सोच करके सुना बस ने जोर से गला हिलाया अपना, जिससे हाथ छूट जा, हाथ छूट जा। पर नंदनंदन का हाथ छूटना तो रहा दूर, उन्होंने और भी जोर से पकड़ लिया। अरे कोई गिरने लगता है तो पकड़ता नहीं, स्वाभाविक है। तो बच्चे थे, इन्होंने जोर से पकड़ा कहीं गिर न जाए हिलते हुए। और अब ये जो गला हिलावे उन्होंने पकड़ लिया, तो वो नाचने लगे।